नयस्य साक्षात् भव पद्मजादिभि रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः ददामेषु स सात्वतां पतिः नयस्य साक्षात् भव पद्मजादिभि रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्या पशमेन पूजिता सीदतामेष स सात्वतां पतिः नयस्य साक्षात् रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् भक्त्योपशमेन पूजितः सीदतामेष स सात्वतां पतिः नयस्य साक्षात् भव पद्मजादिभि रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता न नहीं यस्य जिसका भगवान कृष्ण का साक्षात प्रत्यक्ष भव शिवजी पद्मज आदि भी ब्रह्मा जी इत्यादि के द्वारा रूपम रूप को धिया ध्यान से वस्तुतया वस्तुतः उपवर्णितम बताया जा सकता है। मौनेन मौन से भक्त्यो भक्त्या भक्ति से उपशमेन सभी भौतिक क्रियाकलापों को पूरा करके पूजितः जिनकी इस प्रकार पूजा की जाती है प्रसीदताम हम पर प्रसन्न हो एषः यह सह वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सात्वताम भक्तों का पति ही पालक स्वामी तथा मार्गदर्शक अनुवाद और तात्पर्य शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा यहाँ अब वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उपस्थित हैं जिनका वास्तविक रूप ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुषों को भी समझ नहीं आता है। उनके भक्त अपने निष्ठापूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा उनका साक्षात्कार करते हैं। ऐसे श्री भगवान जो अपने भक्तों को पालन करता है जो अपने भक्तों के पालन करता है और जिनकी पूजा मौन भक्ति तथा भौतिक कार्यों के बंद करने के द्वारा की जाती है हम पर प्रसन्न हों। तात्पर्य जब भगवान श्री कृष्ण शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों को भी ठीक से समझ नहीं आते तो सामान्य व्यक्तियों को क्या कहा जाए। लेकिन वे अपने अहित्य की कृपा से अपने भक्तों को भक्ति का वरदान देते हैं जिससे वे भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चस्मि तत्वतः। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण को सचमुच जान सके, किंतु यदि कोई भक्ति में सेवा में लग जाता है तो वह उन्हें अच्छी तरह से समझ सकता है। इसकी पुष्टि भगवान ने भी भगवद गीता 7वें अध्याय के 1 श्लोक में की है। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयम् समग्रम् माम् यथा गास्यसि तश्रृणु। हे पृथापुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार मेरी चेतना से परिपूर्ण होकर और अपने मन को मुझ में अनुरक्त करके योगाभ्यास करने से तुम बिना संशय मुझे अच्छी तरह से समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि कोई उन्हें पूर्णतया निश्चित रूप से किस प्रकार जान सकता है। ना केवल पांडव अपितु कोई भी व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के आदेशों को निष्ठापूर्वक स्वीकार करता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में समझ सकता है। युधिष्ठिर को उपदेश देने के अंत में श्री नारद मुनि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे वह सब पर प्रसन्न हो और सभी जन ईश चेतना में पूर्ण बनकर भगवत धाम वापिस जा सकें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस भागवतम क्लास में, और मैं विशेष रूप से मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कृष्ण बलराम मंदिर मैनेजमेंट के प्रति जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया है शिव वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ कहने का। तो मैं इसे अपना बहुत सौभाग्य मानता हूँ और आप सब भक्तों से आशीर्वाद याचना करता हूँ कि मैं जो भी भागवतम पे कुछ कहूँ वो प्रभुपाद के प्रभुपाद अनुग बन के उनके पद चिन्हों पर चल के और उनकी प्रसन्नता के लिए हमारे हृदय को जो प्रेरणा दे ऐसा कुछ शब्द कह सकूं। मेरी आपसे आशीर्वाद याचना है। एक बार दोबारा मैं अनुवाद पढ़ना चाहूँगा इस श्लोक का। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज कोई श्लोक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ अब वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उपस्थित हैं आपके राजमहल में, जिनका वास्तविक रूप ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुषों को भी समझ में नहीं आता। उनके भक्त अपने निष्ठापूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा उनका साक्षात्कार करते हैं। ऐसे श्री भगवान जो अपने भक्तों के पालक पालन करता है और जिनकी पूजा मौन भक्ति तथा भौतिक कार्यों के बंद करने के बाद की जाती है, हम पर प्रसन्न हों। तो बहुत सुंदर श्लोक नारद मुनि कह रहे हैं। सर्वप्रथम कह रहे हैं कि ना यस्य साक्षात भव पद्मजा, तो भव शिव जी हैं, पद्मजा ब्रह्मा जी हैं। पद्म जी से गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से पद्म कमल निकलता है और उसके ऊपर उनका जन्म होता है, तो ब्रह्मा जी पद्मजा कह के यहाँ पे संबोधित किए गए हैं। आदि भी का अर्थ है अन्य जो सभी देवता हैं, बाकी सब तो देवता ब्रह्मा जी के बाद ही उत्पन्न हुए हैं। तो शिव जी ब्रह्मा आदि सभी देवता जो हैं इसमें आ गए हैं। रूपम धिया वस्तुतया उपवर्णितम, भगवान का रूप उसको भी हम लगा सकते हैं, भगवान का रूप लीला वो जो है अपने बुद्धि से ब्रह्मा शिव ब्रह्मा आदि के बुद्धि के गोचर नहीं है। भगवान का जो रूप है लीला है महिमा है शिव ब्रह्मा आदि को भी गोचर नहीं है, अपनी बुद्धि से वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे धिया जो है उसको धिया का अर्थ है बुद्धि। फिर ये श्लोक में बताया है कि भगवान का जो रूप है वो ब्रह्मा शिव आदि भी नहीं समझ सकते हैं, कौन समझ सकता है। मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता, जो भगवान की पूजा करता है अर्थात जो भगवान की भक्ति के अंग या पूजा का अर्थ है भगवान का नाम जप श्रवणादि कीर्तन भगवान के श्री अर्च विग्रह का सेवा जो हम भक्ति के अंग हैं, जो भगवान की भक्ति करता है कैसे। यहाँ पे दो चीज और बताई गई हैं, मौनेन भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन मौन मौन रख के, तो कहेंगे भाई हमारा हम तो मौन भक्त लोग तो मतलब भगवान की स्तुति करते हैं। तो मौनेन का अर्थ है हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमेशा अंदर से जोर जोर से चिल्लाती हैं मुझे ये खाना है मुझे ये देखना है। इंद्रियां जो हमारे भौतिक पदार्थ हैं, हमारी जो इंद्रियों की अंदर की आवाज़ है ना वो बहुत बाहर के लोग को सुनाई नहीं देती, लेकिन बहुत जोर जोर से है ना, जब इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है तो बहुत ऊंचा ऊंचा जोर जोर से चिल्लाती हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। जो भी इंद्रियां मांगती हैं प्रायः जीव इंद्रियों के वश में उनकी आवाज़ से ही, जो इंद्रियों की आवाज़ है या मन की आवाज़ है, मन जो है एकादश इंद्रियों में मन भी आ गया है, पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां और मन, तो इंद्रियां जो आवाज़ अंदर से उठाती हैं हम उनको मना नहीं कर पाते, बड़ा बड़ा कठिन भी है। तो मौनेन जब उनकी आवाज़ थोड़ा शांत हो जाए। दूसरा मौनेन का अर्थ लेंगे कि हम इस जीवा से ऐसा कुछ भी ना बोलें जो भगवान का गुण महिमा या सेवा से संबंधित ना हो, तो भगवान का नाम जप करें गुण महिमा आदि का वर्णन करें या अन्यथा जो भी कुछ बोलें जैसे कुछ साधारण बात व्यवहार अर्थ, व्यवहार अर्थ हम बोलते हैं, व्यवहार के लिए भी हमें बात करना पड़ता है किसी से। सब्जी मार्केट में जाएंगे तो सब्जी का रेट भी पूछना है, अभी हम अगर सब्जी का रेट पता करें तो वो क्या भगवान की महिमा हुई गान, सवाल उठा सकते हैं जाके के सब्जी का रेट पता करेंगे, व्यवहार अर्थ हम कुछ भी किसी से सवाल पूछेंगे तो वो क्या भगवान की महिमा गुण वर्णन हुआ। लेकिन यदि भक्तों का जीवन ऐसा है कि उनका जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की सेवा के संबंधित है, यदि हम सब्जी का रेट भी इंक्वायर कर रहे हैं या थोड़ा भाव भी करते हैं ना हम लोग, कम करो इसको ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा जो भी है, यदि वो हम एक उदाहरण दे रहा हूँ सब्जी की तरह भी ग्रोसरी है सब्जी है वो लेकर के हम यदि भगवान के सेवा में उनके लिए भोग लगाते हैं उनकी सेवा में अर्पण करते हैं श्री विग्रह की पूजा कर रहे हैं
तो व्यवहार अर्थम किया हुआ कार्य भी भक्ति के साथ जुड़ के वो भक्ति का ही कार्य माना जाता है। तो इसलिए मौन इनका अर्थ आएगा यहां पे कि भगवान का नाम श्रवण कीर्तन या फिर उनकी सेवा से संबंधित जो भी है उसका हम उसके संदर्भ में बोलें। उसके अलावा और दूसरा कुछ भी जो हम उच्चारण करें वो हमारी भक्ति को बढ़ाता नहीं है, बल्कि जो प्रजल्प है वो जो हमारी कृष्ण कथा में हमारी आसक्ति है या हम रुचि हमें कृष्ण कथा में थोड़ी रुचि उत्पन्न होती है, हम जैसे जैसे भगवान की कथा का श्रवण करेंगे हृदय में अनर्थ निवृत्ति होगी, भगवान के प्रति निष्ठा तो थोड़ा रुचि का उत्पन्न होगा। लेकिन जब प्रजल्प करते हैं तो जो भी हमने आध्यात्मिक पूंजी कमाई है वो धीरे धीरे नीचे से बहने लगती है। जैसे ऊपर से मटके में पानी भरो, नीचे से छेद है तो क्या होता है, वो पानी धीरे धीरे लीक करता रहता है। हमने रात को मटका भर के रखा, सुबह खाली, ऐसा सुबह हमने भागवतम आदि श्रवण किया, कृपा को बटोरा, दिन में प्रजल्प किया, खाली। तो ऐसा इस तरह से प्रजल्प करने से, निंदा करने से, ये सबसे जो है जो हम आध्यात्मिक भगवान की कृपा जो पूंजी है उसको कमाते हैं, लेकिन उसको साथ साथ हम गवाते भी रहते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम जो भी बोल रहे हैं उसको सोचें कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ये इसकी ज़रूरत है ये बोलने की, कि इसके बिना भी कितना आवश्यकता है जो भी बात करें। भागवतम के एकादश स्कंद में कहा गया है, यावत जितेंद्रियो न स्यात् जितेन्द्रिय इंद्रिया प्रमाण न जीवेत रसना यावत जीवेत रसना जिते सर्वम जिते रसे। श्लोक का अर्थ है तावत जितेंद्रिय न स्यात्, कौन व्यक्ति जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय किसको कहा जा सकता है, वीतान्य इंद्रिया पुमान, यदि उसने सभी इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया है, सभी एकादश इंद्रिय हमने बताया गया है, लेकिन कहे कि थोड़ा मेरा जिह्वा भी नियंत्रण नहीं है, कभी कभी मैं ऐसा कुछ बोल देता हूँ, अनाप शनाप कुछ बोल देता हूँ, ऐसा मुंह से निकल जाता है कुछ जो दूसरे को बुरा लगता है या उचित नहीं है, या मैं कुछ कभी कभार जो प्रसाद नहीं है, भोग नहीं लगा, भक्तों ने नहीं बनाया, वो भी मैं कभी कभार थोड़ा ग्रहण कर लेता हूँ थोड़ा फ्लेवर के लिए लाइफ में। तो इस तरह से थोड़ा जिह्वा पे नियंत्रण नहीं है, बाकी मैंने सभी इंद्रियों को वश कर लिया है, मैं सुबह बहुत जल्दी मंगल आरती उठता हूँ, मैंने नींद में वश कर लिया है, मेरा पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति कोई आकर्षण नहीं, मेरा धन कमाने के प्रति कोई आकर्षण नहीं कि मैं बहुत धनी बन जाऊँ। तो इस तरह से यदि मैंने अन्य इंद्रियों पर अन्य मेरी इच्छाओं पर मैंने नियंत्रण कर लिया है, लेकिन मेरा जिह्वा पे थोड़ा नियंत्रण कम है, तो भागवतम कहती है कि आपको जितेंद्रिय नहीं कहा जा सकता, अभी समय है काफ़ी। लेकिन कोई कहे कि मुझे बाकी अन्य जो भौतिक इच्छाएं या मेरी अन्य इंद्रियां मुझे मालूम नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिह्वा पे नियंत्रण कर लिए जाए उसको तुरंत जितेंद्रिय कहा जा सकता है, भागवतम का श्लोक है, जिते सर्वम जिते रसे, जिते सर्वम, जैसे ही हमने जिह्वा पे नियंत्रण किया अन्य सभी इंद्रियां बहुत शीघ्र ही वश में आ जाएंगी। जिते सर्वम जिते रसे, जिह्वा को रस कहा गया, रसे रसना भी कहा गया, रसना हम वैसे एक शरबत होता था, अभी भी शायद आता होगा रसना, गर्मी में रसना पीजिए, जिह्वा को रसना कहा गया है, जो अलग अलग प्रकार का रस आस्वादन करती है उसको रसना कहते हैं जिह्वा, और रसे भी कहते हैं। तो क्योंकि जिह्वा अलग अलग पदार्थों का रस आस्वादन करती है और जिह्वा से हम बोलते भी हैं, ये एक इंद्रिय है जो दो कार्य करती हैं, हमने प्रभुपाद की किताब में पढ़ा है। तो जिते सर्वम जिते रसे, जब हम जिह्वा पे नियंत्रण पालेंगे, भागवतम कहती है तुरंत जितेंद्रिय व्यक्ति उसको घोषित किया जा सकता है इस तरह से। तो इसलिए मौनेन का शब्द क्या है यहाँ पे, मौनेन भक्त्यो, हम जिह्वा पे नियंत्रण रखें, जिह्वा पे नियंत्रण रखें। तो जो भी कहें सोच समझ के ये कितना उपयुक्त है, ये किसके लाभदायक है, भक्तों को हृदय को ठेस तो नहीं पहुँचाएगा, ये सेवा के लिए अनुकूल है, थोड़ा सा हमें कॉन्शियसली, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें प्रयास करना है। और जितना हो सके सबसे बड़ा मौन है हमेशा भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में ये सबसे बड़ा मौन व्रत है, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान के नाम का हमेशा जप करना ही सबसे बड़ा मौन है। प्रभुपाद के गुरु भाई थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, हमने सुना होगा उनका, आपने कई लोगों ने सुना होगा, उनका समाधि भी है पावन सरोवर के पास, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो बताया गया है कि प्रायः वो कुछ भी व्यवहार अर्थम भी बहुत बहुत बार हरे कृष्णा महामंत्र ही बोलते थे, जिससे भी मिलते थे हरे कृष्णा, भगवान का नाम कीर्तन भजन हरे कृष्णा। तो मैंने परम पूज्य राधाना स्वामी महाराज से एक कथा सुनी है, वो कहते थे कि वो जब ब्रज में थोड़ा समय रह रहे थे तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज से उनका थोड़ा संपर्क हुआ और उन्होंने उनके मुख से महामंत्र या फिर वैष्णव भजन के अलावा कुछ सुना ही नहीं था। ये व्यवहार अर्थम कभी उन्होंने कुछ शब्द बोल दिया हो तो बोल दिया हो, बहुत कम, उन्होंने प्रायः नहीं सुना था। वो जब भी उनसे मिलते थे तो ग्रीटिंग भी ऐसा नहीं पूछते थे कि कैसे हैं आप, क्या है, हरे कृष्णा, तो वो भी हरे कृष्णा बोल के बोलते थे, जवाब देते थे। तो हरे कृष्णा में ही सब सवाल सब जवाब आ जाते थे। तो एक बार राधाना स्वामी महाराज मंगल आरती में नहीं आ पाए, प्रतिदिन मंगल आरती जाते थे जब यहाँ रह रहे थे, मंगल आरती में नहीं आ पाए। तो जब मंगल आरती के बाद 9-10 बजे वो दर्शन करने के लिए गए जहाँ बाबा जी महाराज रह रहे थे, तो बाबा जी महाराज ने उनको पूछा, व्हाई डिड यू नॉट कम फॉर मंगल आरती टुडे, आज आप मंगल आरती के लिए क्यों नहीं आए। तो वो ऐसा पीछे से बोला, ऐसा पीछे से बोला उन्होंने अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने। तो राधा महाराज ने पीछे मुड़ के देखा और देखा कि अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज हैं। तो उन्हें सोचा ये आवाज़ कहाँ से आई, उसने बाबा जी महाराज तो इंग्लिश नहीं जानते, उन्होंने कभी उनसे मुख से हिंदी में नहीं सुनी थी, वो केवल हरे कृष्णा बोलते हैं और इंग्लिश में बोल रहे हैं और एकदम बहुत ही सरल उनका स्वभाव वेशभूषा कि वो इंग्लिश में बोलें और महामंत्र को छोड़ के भगवान का नाम को छोड़ के कुछ बोलें, इसकी संभवता बहुत कम है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो महाराज को लगा नहीं कोई तो बोला है लेकिन मालूम नहीं कौन बोला है, दोबारा मुंह मुख मोड़ के अपना कार्य करने लगे, थोड़ा कुछ जल भर रहे थे नल से, दोबारा करने लगे। पीछे से दोबारा आवाज आई, व्हाई डिड यू नॉट कम फॉर मंगल आरती, तो मंगल आरती के लिए क्यों नहीं आए, अंग्रेजी में पूछा। दोबारा मुड़ के देखा, दोबारा देखा केवल किंचन के बाबा जी महाराज हैं। सोचे कौन पूछ रहा है, कहाँ है, कौन व्यक्ति है, ढूंढ रहे थे। बाद में तीसरी बार ऐसा हुआ और वो पास में आकर के बोले, उनकी तरफ देख के बोले, तो भौचक्के रह गए, बोलते इनको अंग्रेजी भी आती है। उस समय के 1970 की बात कर रहा हूँ कि जिनके मुख से मैंने कभी आज तक हरे कृष्णा महामंत्र को छोड़ के कुछ सुना ही नहीं, तो वो ऐसा महाराज की धारणा थी कि शायद इन व्यवहार अर्थम इनके कुछ लोग हैं ज़्यादा बात नहीं करते, उनकी भाषा में इतना ये नहीं होता है, बात करने में निपुण नहीं, या उनका उनका स्वभाव नहीं ज़्यादा कुछ बात करना, या फिर अंग्रेजी तो दूर की बात, वो सोचते हैं कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ हिंदी नहीं जानता हूँ तो भी मेरे को हरे कृष्णा बोलते होंगे हमेशा, और कुछ व्यवहार अर्थम कुछ बोले नहीं आज तक। तो जब उन्होंने देखा कि बाबा जी महाराज इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो एकदम भौचक्के रह गए, तो इनके मुख से मैंने आज तक कभी कुछ सुना ही नहीं भगवान के नाम के, लेकिन उन्होंने पूछा कि अब मंगल आरती क्यों नहीं है, ऐसा कंसर्न था। तो ये मैं क्यों उदाहरण दिया हूँ, मौनेन प्रायः और कुछ नहीं बोलते थे, ये सबसे बड़ा मौन है, सदा भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा मौन है, रही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग है। भजनेरा मध्य नवविध, भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्णा दीते प्रेम दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भजन में नवविधा भक्ति श्रेष्ठ है, वो कृष्ण और कृष्ण प्रेम देने में उसकी महाशक्ति है, और उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है जो सबसे बड़ा मौन है। तो नारद मुनि यहाँ पे इस तरह से कह रहे हैं कि देखिए अपनी बुद्धि से भगवान को समझ नहीं पाएंगे, ब्रह्मा शिवादि भी नहीं समझ सकते, लेकिन यदि हम, जैसे हमने मौन का चर्चा किया ना, मौन क्या, मौन का क्या अर्थ है, मौनी बन के भक्त, 26 भक्तों की जो गुण है उसमें मौनी एक है। अब देखेंगे 26 जो लाइन दिया गया है, 26 में चतुर्चरितामृत में उल्लेख है 26 गुणों का, भक्त के आखिरवां 26वां गुण है मौनी, कृपा कृपालु दक्ष मौनी, इस तरह से दक्ष मौनी। अंतिम 26वां गुण है मौनी, भक्त जो है मौनी है, मौन व्रत रखता है, अर्थात जिह्वा पे नियंत्रण और सदैव भगवान का नाम जप कीर्तन, तो ये मौनी है। तो इस तरह से भक्ति की जाए तो भगवान, भगवान भक्त के गोचर हैं, जो शिव ब्रह्मादि भी भगवान को नहीं समझ सकते, इस प्रकार से भक्ति करने से भगवान को तत्वतः समझा जा सकता है। और प्रभुपाद भी 7वां जो अध्याय है उसका प्रथम श्लोक बताते हैं, मय्यासक्त मनः पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया संशयम समग्रमाम यथा ज्ञास्यसि तश्रृणु। श्लोक को भी प्रभुपाद ने तात्पर्य में कोट किया है। और प्रसीद ताम एज मे सात्वताम पति, नारद मुनि कह रहे हैं वो भगवान जो किसी के बुद्धि के गोचर नहीं, इंद्रियों मन और बुद्धि के गोचर नहीं, जो केवल भक्ति से ही जिनको समझा जा सकता है, भक्ति से ही जिनको पाया जा सकता है, वो भगवान सभी जीवों के ऊपर कृपा करें, हम सबके ऊपर कृपा करें। प्रसीद ताम, वो प्रसन्न हो, वो भगवान हमसे प्रसन्न हो, ये जो है बहुत सुंदर भाव है। हमको ये बारंबार इस पे मनन करना चाहिए कि मैं क्या कार्य करूं कि भगवान प्रसन्न हो। प्रसीदतामेश सात्वताम पति ही, तो भगवान को सात्वताम पति कहा गया है, या सात्वत, कई बार भागवत में बता ये आया है भगवान का नाम सात्वताम पति ही। तो मुख्यतः दो अर्थ हैं सात्वताम पति के, एक सात्वत राजा भी हुए यदुवंश में, सात्वत का राजा है, तो सात्वताम कुले, आप सात्वत कुल में जन्म लिए हैं, सात्वताम कुले, गोपी गीत में है शब्द है सात्वताम कुले, तो आप सात्वत कुल में जन्म लिए हैं, तो सात्वताम पति ही भी उसको, उनको माना गया है। और मतलब यदुवंशियों के आप पति हैं। और दूसरा सात्वत जो है, सभी भक्तों को भी सात्वत कहा जाते हैं, भगवान जो जो सत्य का या सत भक्ति का मार्ग जो है, सत मार्ग है, उसका जो आश्रय लें वो सात्वत हैं। और सात्वताम पति ही, जो भक्ति के सदमार्ग का के ऊपर चलते हैं, उनके जो पति है, पति का अर्थ क्या है, बहुत सुंदर सुंदर रूप से बताया गया है यहाँ पे, पति का अर्थ यहाँ पे बताया गया है तात्पर्य में, कहाँ पे है, 3 शब्द बताए गए हैं पति के लिए, जो उनके मार्गदर्शक हैं, कोई देख रहा है तात्पर्य में, मैंने नोट किए थे तात्पर्य पढ़ते हुए, 3 शब्द, हाँ इसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, पालक स्वामी तथा मार्गदर्शक, हमारे पालन करते हैं भगवान, हमारे स्वामी हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। तो जो हमारे पालक हैं, स्वामी हैं, मार्गदर्शन हैं, वो हमसे प्रसन्न हो। प्रसीदतामेश सात्वताम पति, प्रसीदतामेश सात्वताम पति। तो हमें ये मनन करना चाहिए कि हम क्या कार्य करें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, राधा रानी हमसे प्रसन्न हो, श्याम सुंदर हमसे प्रसन्न हो। ऐसे सोचना चाहिए कि मेरे क्या आज मैंने ऐसा कुछ कार्य किया, या ऐसा कुछ कार्य हुआ मेरे से कि भगवान को जिससे प्रसन्नता ना हुई हो। देखिए, भगवान की प्रसन्नता से भक्ति की संपदा बढ़ती है, ये बहुत सुंदर सिद्धांत चतुर्चरितामृत में आता है। बड़ा चतुर्चरितामृत में केवल एक पुरुष आपको स्टोरी नहीं बता रहा, जहाँ पे वृद्ध ब्राह्मण और छोटा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जो छोटा ब्राह्मण है या युवक ब्राह्मण है, एक युवक है एक वृद्ध है, वृद्ध ब्राह्मण की नाना प्रकार से सेवा करता है, और वृद्ध ब्राह्मण ने कहता कि आपने इतनी सेवा की मेरी, मैं मेरी कन्या का दान आपको करता हूँ, मेरी कन्या का विवाह आपको कराने का वचन उठाता हूँ। तो छोटे ब्राह्मण क्या कहते हैं वहाँ पे, सिद्धांत कहते हैं, कन्यादान पात्र आमी नाही तोमार, कृष्णा प्रीत करी तोमार सेवा व्यवहार। तो कहते नहीं नहीं, अरे अब आ कह रहे हैं आपकी कन्या जो कितनी पढ़ी लिखी है, रूपवती है, धनवान है, ऊंचे कुल की है, आप उसका विवाह मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण अनपढ़ ब्राह्मण से करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, वो कहते हैं कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। कन्यादान पात्र आमी ना हुई तुम्हार, आपकी कन्या का मैं उचित पात्र नहीं हूं। देखिए उनका उनका यहाँ पे कितने सत्यवादी हैं और उनमें नम्रता भी है। यदि हमको कोई कुछ दे, कुछ पुरस्कार दे और कुछ स्तुति करे हमारी, तो हम हमें ऐसा हृदय से हम बाह्य रूप से चाहे कुछ भी कहें, हृदय में हमारे लगता है अरे ये व्यक्ति मेरी महिमा को जान गया है, इस तरह से एक अनुभूति होगी। ऐसा सोचना कि वास्तव में आप जो कह रहे हैं मैं उसके लायक नहीं हूँ, या मुझे कोई कृपा मिले और हमके भगवान के बहुत अहित की कृपा है, मैं उसके लायक नहीं हूँ मैं, तो ये देखिए कितना उनका जो युवक ब्राह्मण है बहुत सत्यवादी और बहुत नम्र है, कहते कि मैं आपकी पुत्री के लायक नहीं हूँ, मेरी योग्यता नहीं है। फिर कृष्ण प्रीति, आपने मेरी सेवा जो इतनी की, मैंने आपकी सेवा आपसे कुछ पाने के लिए नहीं की बिल्कुल भी, कि मुझे कुछ मिले। कृष्ण प्रीति, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो इसलिए मैंने आपकी सेवा की है, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, राधा रानी प्रसन्न हो, मुझे आप कोई भी उपहार मत दीजिए, आप कन्यादान देना चाहते हैं मुझे एक रुपया भी मत दीजिएगा, क्योंकि क्या होगा जब हम सेवा करते हैं और उसके फल हम चाहते हैं कि मुझे इसमें क्या मिलेगा अभी सेवा के बाद, मुझे कुछ मैंने सेवा किया तो महाप्रसाद, कुछ महाप्रसाद मिलना चाहिए या कुछ महागार्लैंड मिलना चाहिए या कुछ मेरी स्तुति होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से जो हमारी सेवा के बाद कि मैंने ये सेवा की है अभी मुझे इसका फल मिलना चाहिए, वो आकांक्षा है तो कृपा कम हो जाती है। यदि फल की इच्छा होगी हमारी, यदि सेवा जितनी निस्वार्थ है उतनी कृपा अधिक है। तो इसलिए कई बार है, जैसे ऐसा होता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कई बार कुछ भक्त लोग सेवा करते हैं और कुछ कोई फेस्टिवल में कोई महाप्रसाद बट रहा है तो उन्हें लगता है मैं लाइन में नहीं लगूंगा, मैं आगे जाके लूंगा, मैं यहाँ 10-15 साल से सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रही हूँ, तो मैं लाइन छोड़ के आगे जाके लूंगा। और कोई बोलते सब लाइन में आओ, अरे मैं भी लाइन में लगूँ क्या, मैं यहाँ 15-20 साल से सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी लाइन में लगने की आवश्यकता है क्या? ऐसा एक भावना कई बार आ जाती है। दूसरी बात है कि हमको कुछ अन्य सेवा है, हम याचना कर सकते हैं, भाई अभी मेरे को उतना समय नहीं, थोड़ा महाप्रसाद दे दीजिए, कुछ दूसरा सेवा जाना है, पर ये एक भावना है। दूसरी भावना है कि मैंने 15-20 साल सेवा की है और तो मुझे बोल रहे हो कि ये मुझे करना चाहिए, लाइन में लगना चाहिए या कुछ और, ऐसा मुझे पीछे से दर्शन करना चाहिए, मुझे आगे से दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं और सेवा के बाद हमारी भावना होती है कि मेरा भी अधिकार है, भगवान की कृपा मुझे आगे से दर्शन, महाप्रसाद इत्यादि मेरा अधिकार है, मुझे महागार्लैंड मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है उसके ऊपर, मैंने सेवा की है इतनी, ये भावना से वो तो मिल जाएगा, भगवान के लिए क्या दुर्लभ है, आपको महाप्रसाद जितना चाहिए, स्तुति चाहिए, आदि चाहिए, पोस्ट पोजीशन चाहिए, सब दे देंगे भगवान, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी से दे देंगे। लेकिन उनकी कृपा को जो निर्वलीकम, मतलब जो अनपटेंशियस उनकी मर्सी है, कहने का अर्थ है जो शुद्ध उनकी कृपा है जिससे हमारी भक्ति बढ़े, वो नहीं देंगे। वो जब तक दूसरी इच्छाएं हैं, जब हम सोचते हैं हमारा अधिकार है क्योंकि मैंने सेवा की है, तो भगवान की शुद्ध कृपा को, पूर्णतया कृपा को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यदि हमें भक्ति में प्रगतिशील होना है शीघ्र अतिशीघ्र, तो जो भी सेवा करें ये मनोभावना बार बार रहनी चाहिए, प्रसीदतामेश समय सात्वताम पति ही, भगवान प्रसन्न हो, मुझे इससे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को और इससे कुछ नहीं चाहिए, है ना, अन्यथा मेरे कुछ रिकॉग्निशन हो, मुझे पोस्ट मिल जाए, मुझे कुछ भी लाभ भक्तों के समाज में मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए। और यदि बिना मांगे मिल जाए है ना, हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अन्य भक्त हमें कभी कभी पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे, बिना मांगे मिल जाए तो अपने आप को उसके लायक नहीं समझना चाहिए, जैसे ये युवक ब्राह्मण बताते हैं कि अगर हम चाह मैं इसके लायक नहीं हूँ फिर भी ये बहुत अहितु की कृपा है, तो हृदय में उससे कृतज्ञता बढ़नी चाहिए। तो इस तरह से ये मनोभावना से यदि हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कृष्णा प्रीते करी तुमार सेवा वह वार, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो मैंने आपकी सेवा इसलिए की है, युवक ब्राह्मण कहते हैं। फिर कहते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता से भक्ति की संपदा बढ़ती है, ये सिद्धांत भी वो युवक ब्राह्मण ही कहते हैं। कृष्ण ने कृपाए भक्ति संपदा बढ़ाई, भगवान की कृपा से भक्ति की संपदा बढ़ती रहती है। तो वास्तव में भक्ति की संपदा ही हमारी मूल पूंजी है, मूल पूंजी है। तो हमें इस पूंजी को कमाना है, भगवान की कृपा को, उनके प्रसाद को, ये हमें पाना है। और इसको बार बार हमें मैं जो भी कह रहा हूँ वास्तव में मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, अपने आप को मैं स्मरण करा रहा हूँ कि आप भक्तों के आशीर्वाद से मैं भी इस पथ पे जो कह रहा हूँ इस पथ पे मैं चल सकूँ, इसलिए मैं अपने आप को स्मरण करा रहा हूँ। मैं भी इससे बहुत दूर हूँ, मैं ऐसा नहीं कि आपको उपदेश दे रहा हूँ और मैं इसका पालन कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वस्तुतः मैं भी प्रयास कर रहा हूँ इस पथ पे चलने का, जो नारद मुनि यहाँ पे दिखा रहे हैं हम सबको, नारद मुनि हम महाजन हैं, हम सबको ये पथ दिखा रहे हैं, उस पथ चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसलिए मैं थोड़ा आपसे भक्तों के साथ में चर्चा की जाए, भक्तों के आशीर्वाद से हमें भी जो है स्ट्रेंथ मिलती है इस भक्ति के मार्ग पे चलने का। दुर्ग में पथि में अंधस्या स्खलत्पाद गतिर्मुहु सो कृपा यष्टिदान संतः संतवलंबनम, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं दुर्ग में पथि में अंधस्या, ये भक्ति का मार्ग, जबकि भक्ति का जो प्रोसेस है, भक्ति का जो क्रिया है वो बहुत सरल है, लेकिन हमारे अनर्थों की वजह से ये दुर्गम भी है, जो पथ है ये पथ दुर्गम है भक्ति का। मतलब ये सरल भक्ति का मार्ग जो हमें चार्य ने दिया है, इसका दिन एवरी डे प्रतिदिन इसका आचरण करना, एक सरल भाव से नम्र भाव से आचरण करते रहना आजीवन भर, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं दुर्गम में पथि, मेरा पथ जो है दुर्गम है और मैं अंधा हूँ, मैं मुझे दृष्टि नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और मेरा इसलिए मेरा जो पांव है वो बार बार फिसल रहा है भक्ति के मार्ग में। हम भी देखते हैं, हमको सुनते हैं, प्रेरणा लेते हैं, बाद में आचरण नहीं कर पाते, कई बार उसका अर्थ है पैर फिसल जाता है बार बार। दुर्गमे पथि में अंधस्या स्खलत्पाद गतेर महु, बार बार हमारा पैर फिसल जाता है भक्ति के मार्ग में। सो कृपा यष्टि दाने न, तो इसलिए भक्तों की जो कृपा है वो एक लाठी की तरह है, सो कृपा यष्टि दाने न, तो लाठी की तरह है। तो यदि जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं लाठी लेके चलते हैं ना, कहीं पर पैर स्लिप होने लगे तो थोड़ा लाठी दबा दें, तो लाठी को जरा जोर से पकड़ लें, ग्राउंड के ऊपर दबा दें तो थोड़ा सहारा मिल जाएगा। तो भक्तों का जो संग है वो एक लाठी की तरह है, और वृंदावन में लाठी लेते हैं जो बन्ने हैं, बंदर बंदर इत्यादि हैं वो भी आए नहीं, तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अनर्थ इत्यादि हम पे झपटे नहीं, थोड़ा भक्तों का संग है लाठी की तरह है, उनको भी दूर रखेगा। तो इसलिए भक्तों का जो आशीर्वाद है, भक्तों का संग है, वो हमारे लिए एक लाठी है जो हमारी हमको पैर फिसलने से बचाएगी और अन्य अनर्थ आदियों से भी हमारा आवरण करेगी। भक्ति लता का आवरण जो है वो भी कहा गया है, रूप गोस्वामी ने उदाहरण दिया है, भक्ति लता बीज लगाकर उसे आवरण करना चाहिए, वो आवरण है भक्तों का संग, भक्तों का संग। तो आप सभी भक्तों के संग में मुझे आज ये भागवत के ऊपर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं और आप सब लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक ध्यानपूर्वक भागवत का श्रवण किया, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।